एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में फिर से स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो लिखी तो गई थी करीब 50 साल पहले।
हाँ, लगभग आधी सदी हो गई,
लेकिन आज का जो दौर है सोशल मीडिया का, सेल्फ हेल्प का, उसमें शायद ये पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है।
बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर लैश की 1979 की बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं कि विवादास्पद भी किताब द कल्चर ऑफ नार्सिसिज्म,
यानी आत्ममुग्धता की संस्कृति।
जी। और ये किताब वैसे तो अमेरिकी समाज पर फोकस थी, पर इसकी कई बातें आज दुनिया भर के मॉडर्न समाजों में सच लगती हैं, गूंजती सुनाई देती हैं।
हाँ, और ये साफ करना जरूरी है कि यहाँ नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता का मतलब सिर्फ अपनी सेल्फी लेना या अपनी तारीफें करते रहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नैश एक ज्यादा गहरे कल्चरल और साइकोलॉजिकल बदलाव की तरफ इशारा कर रहे थे।
तो आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। लैश के हिसाब से ये आत्ममुग्ध संस्कृति आखिर है क्या चीज, ये पनपती कैसे है, और हमारे समाज के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, और हाँ, खुद हमारे लिए इसके मायने क्या हैं। चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की, इसकी परतें खोलते हैं।
शुरुआत करते हैं लेखक से, क्रिस्टोफर लैश, जिनका समय था 1932 से 1994 तक। वो एक अमेरिकी इतिहासकार थे और सामाजिक आलोचक।
दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने बताया, कि वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे।
नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज और कल्चर को समझने के लिए साइको एनालिसिस, मतलब मनोविश्लेषण, खासकर फ्रॉयड के विचारों का बड़ा अनोखा इस्तेमाल किया।
और शायद यही बात उन्हें खास बनाती थी कि वो अलग अलग फील्ड्स जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनको मिला के देख पाते थे।
बिल्कुल, वो इन सबको मिलाकर समाज के उन पैटर्न्स को, उन बीमारियों को पकड़ पाते थे जो शायद दूसरों को नजर न आती हों। उनकी एक और किताब थी हेवन इन अ हार्टलेस वर्ल्ड, उसमें भी उन्होंने यही देखा था कि मॉडर्न समाज परिवार पर कैसे असर डाल रहा है।
तो वो लगातार इसी चीज में इंटरेस्टेड थे कि जो बड़ी सामाजिक ताकतें हैं वो हमारी पर्सनल लाइव्स को कैसे बदल रही हैं।
जी, और उनकी जो अकादमिक ट्रेनिंग थी और उनकी आलोचनात्मक नज़र, उसने उन्हें इस तरह की किताब लिखने के लिए तैयार किया। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखते थे, बल्कि उनके पीछे जो गहरे कल्चरल बदलाव थे उन्हें समझने की कोशिश करते थे। और एक बात और,
हाँ,
उनके लिखने में सिर्फ ठंडा विश्लेषण नहीं था, एक नैतिक चिंता थी, एक फिक्र थी कि समाज जा किधर आए।
हाँ, ये अहम है। तो अब आते हैं किताब पर, इसका सार क्या है, अगर एकदम सीधे शब्दों में कहें तो?
सीधे शब्दों में ये 20वीं सदी के आखिरी हिस्से के अमेरिकी समाज की, और अगर थोड़ा और फैलाकर देखें तो आधुनिक पश्चिमी संस्कृति की एक बहुत तीखी बेबाक आलोचना है।
और लैश का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है?
उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मॉडर्न कल्चर है उसने अनजाने में ही एक खास किस्म के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को बढ़ावा दिया है, जिसे वो नार्सिस्टिक या आत्मुग्ध कहते हैं।
अच्छा, और वो ये भी कहते हैं कि ये बस कुछ लोगों की कमी नहीं है।
हाँ, यही खास बात है। वो जोर देते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक कल्चरल प्रॉब्लम है, एक माहौल का नतीजा है।
माहौल कैसा, कौन सी चीजें ये माहौल बना रही हैं?
उनके मुताबिक हमारी कई संस्थाएं हैं, जैसे उपभोक्तावादी पूंजीवाद, मतलब कंज्यूमर कैपिटलिज्म, या फिर बड़ी बड़ी नौकरशाही वाली कंपनियां, सरकारें, और एक चीज जिसे वो थेराप्यूटिक कल्चर कहते हैं।
थेराप्यूटिक कल्चर, इसका क्या मतलब हुआ? उपचारात्मक मानसिकता?
हाँ, कुछ वैसा ही, मतलब हर चीज को ठीक करने, फील गुड कराने वाली सोच। तो लैश कहते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर, जो पारंपरिक मूल्य थे, जो कम्युनिटी की भावना थी, हमारी जो असली पहचान थी, उसे कमजोर कर रही हैं।
और उनकी जगह किस चीज को बढ़ावा दे रही हैं?
ऐसे व्यवहार को जो सतही है, जो बाहरी दिखावे पे ज्यादा टिका है, और जो लगातार दूसरों से वैलिडेशन चाहता है, मान्यता चाहता है। तो लैश एक बुनियादी सवाल उठाते हैं कि भाई, इतनी तरक्की हो गई, इतनी आजादी है, फिर भी समाज इतना बिखरा हुआ, अकेला और परेशान सा क्यों महसूस करता है?
हाँ, और उनका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि समाज ऐसे लोग बना रहा है जो बाहर से तो शायद बड़े कॉन्फिडेंट दिखें, ग्रैंडियोस लगें,
भव्य,
हाँ, लेकिन अंदर से वो बहुत असुरक्षित होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, गुस्सैल भी और कमजोर भी
अच्छा, ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है।
है। और लैश इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, मिनिमल सेल्फ, मतलब न्यूनतम स्व।
न्यूनतम स्व,
हाँ, एक ऐसा सेल्फ, एक ऐसा व्यक्तित्व जो गहरे मतलब या जुड़ाव की तलाश में नहीं है। उसका फोकस बस किसी तरह दुनिया में टिके रहना है, सर्वाइव करना है। तो लैश की एक बड़ी बात ये हुई कि जिसे हम समझते हैं कि ये तो भाई चरम व्यक्तिवाद है, वो असल में व्यक्ति की मजबूती नहीं,
बल्कि उसका खोखलापन है।
हाँ, सेल्फ का खोखलापन।
चलिए अब किताब के कुछ खास हिस्सों में थोड़ा और उतरते हैं। शुरू के चैप्टर्स में लैश ने 70 के दशक के अवेयरनेस मूवमेंट और थेरेप्यूटिक सेंसिबिलिटी पर काफी लिखा है।
हाँ, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पर्सनल ग्रोथ वर्कशॉप्स वगैरह।
तो लैश का कहना था कि ये आंदोलन असल में लोगों को आजाद नहीं कर रहे थे।
नहीं, उनके हिसाब से ये तो लोगों को उसी आत्ममुग्ध कल्चर के साथ एडजस्ट करना सिखा रहे थे।
एडजस्ट करना मतलब?
मतलब एक तरह से उसी माहौल में ढलना सिखा रहे थे। वो कहते थे कि ये किस्म की झूठी आर्टिफिशियल वैलिडेशन देते थे।
क्या ये थोड़ी ज्यादा कठोर आलोचना नहीं लगती? मतलब लोग तो अपनी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। आलोचना तीखी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लैश का पॉइंट ये था कि ये जो थेरेप्यूटिक भाषा है, ये जो अच्छा महसूस करने पर जोर है, वो धीरे धीरे नैतिक और राजनीतिक सवालों की जगह ले रहा था।
अच्छा, कैसे?
कि लोग अब गहरे नैतिक सवाल पूछने या समाज को बदलने के बजाय बस अपनी पर्सनल वेलबींग, अपनी मेंटल हेल्थ, इस पर ज्यादा फोकस करने लगे थे, जो अक्सर थोड़े समय के लिए ही होता है। लैश ने ऑटो कर्नबर्ग और हिंस कोहोर्ट जैसे मनोविश्लेषकों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म, मतलब जो सचमुच एक मानसिक स्थिति है, उसके लक्षण क्या होते हैं।
जैसे
अंदर से खालीपन महसूस करना, दबा हुआ गुस्सा, तारीफ और वैलिडेशन की जबरदस्त भूख, और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, जिसे वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई कहते हैं।
नार्सिसिस्टिक सप्लाई, ये शब्द तो आज सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सुना जाता है।
हाँ, दूसरों से लगातार अटेंशन और तारीफ खींचते रहना।
खैर, लैश आगे राजनीति से मोहभंग की बात करते हैं, रिट्रीट फ्रॉम पॉलिटिक्स और परिवार की बदलती भूमिका पर।
जी,
वो कहते हैं कि 60 के दशक में जो बड़े सामाजिक आंदोलन हुए थे, उसके बाद जब लोग राजनीति से हटकर खुद को खोजने में लगे,
हाँ, फाइंडिंग योरसेल्फ अलदौर,
तो वो कोई गहरा आत्ममंथन नहीं था। लैश के हिसाब से वो एक तरह का आत्म केंद्रित रवैया था, नार्सिसिस्टिक सेल्फ अब्सॉर्प्शन था।
और परिवार के बारे में क्या कहते हैं?
उनका विश्लेषण परिवार को लेकर भी काफी चिंताजनक है। वो कहते हैं कि परिवार पर बाहरी दबाव बहुत बढ़ गया है। एक तो आर्थिक चिंताएं हैं ही, दूसरे हर चीज के लिए एक्सपर्ट्स पर निर्भरता बढ़ गई है। पेरेंटिंग कैसे करें, निजी समस्याएं कैसे सुलझाएं, हर चीज के लिए थेरेपिस्ट, काउंसलर, कोच।
इससे क्या हुआ?
इससे परिवार की वो भूमिका कमजोर हुई है, जहां वो एक इमोशनल सेफ्टी नेट देता था, पहचान बनाने में मदद करता था। लैश ने इसे परिवार की घेराबंदी, सीज ऑफ द फैमिली कहा।
घेराबंदी, हाँ। और वो प्रजनन के सामाजिकरण, सोशलाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्शन की भी बात करते हैं। मतलब बच्चों की परवरिश कैसे हो, ये फैसला परिवार से ज्यादा बाहरी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं।
ये तो हुई पर्सनल लाइफ और पॉलिटिक्स की बात, लेकिन लैश कहते हैं कि इसका असर काम की जगह और स्कूलों तक भी गया है। वो काम के पतन की बात करते हैं। कैसे?
लैश का तर्क था कि जब काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया रह जाता है, जब उसमें स्किल, क्राफ्ट्समैनशिप, गर्व की भावना खत्म हो जाती है, जब बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसीज और मैनेजमेंट के नियम कायदे हावी हो जाते हैं, तो काम मीनिंगलेस लगने लगता है।
और फिर?
और इस मीनिंगलेसनेस से डील करने के लिए भी लोग एक तरह का नार्सिसिस्टिक व्यवहार अपना लेते हैं, जैसे सिर्फ दिखावे पर ध्यान देना, ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझना, अपनी इमेज चमकाने में लगे रहना।
और शिक्षा के बारे में आपने नई निरक्षरता का जिक्र किया था, इसका मतलब क्या है?
सिर्फ पढ़ना लिखना ना जानना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। लैश का इशारा इस तरफ था कि स्कूल अब मुश्किल एकेडमिक चीजें सिखाने, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के बजाय
किस पर जोर दे रहे हैं?
स्टूडेंट्स को लाइफ एडजस्टमेंट सिखाने, उनका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
तो नतीजा?
नतीजा ये कि स्टूडेंट्स शायद ऊपर से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखें, लेकिन उनमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझने, तर्क करने, गहराई से एनालाइज करने की क्षमता कम हो रही है।
रिश्तों और भावनाओं पर भी इसका असर दिखता है। लैश भावनाओं से पलायन, फ्लाइट फ्रॉम फीलिंग की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग गहरी इमोशनल डिपेंडेंसी से डरते हैं, चोट लगने से डरते हैं।
हाँ, और इसलिए सतही रिश्ते बनाते हैं, सच्ची इंटिमेसी से कतराते हैं।
क्या ये आज भी सच नहीं लगता, कमिटमेंट से डरना?
बिल्कुल, लैश दिखाते हैं कि कैसे लोग इमोशनली खुलने से डरते हैं, करीबी रिश्तों में भी एक दूरी बनाए रखते हैं, कमिटमेंट से बचना, रिश्तों को तब तक ही चलाना जब तक वो फायदेमंद लगें, ये सब उसी पैटर्न का हिस्सा हो सकता है।
और आखिर में एक बहुत जरूरी पॉइंट है, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस का पतन, अतीत का त्याग।
हाँ, एब्डिकेशन ऑफ द पास्ट। लैश कहते हैं कि नार्सिसिस्टिक कल्चर सिर्फ आज में जीता है, एक परपेचुअल प्रेजेंट में।
मतलब लगातार वर्तमान।
हाँ, वो अतीत को बेकार समझता है, इरेलेवेंट मानता है और भविष्य से डरता है, खासकर बुढ़ापे और मौत से।
और इसका नतीजा क्या होता है?
इसका नतीजा होता है वही मिनिमल सेल्फ का बनना, एक ऐसा सेल्फ जो डिफेंसिव है, जो सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस्ड है, जिसके पास ना तो अतीत से सीखने की ताकत है ना भविष्य के लिए कोई विजन।
ये तो एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि अगर हम सिर्फ आज में जी रहे हैं तो क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं?
बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जो लैश उठाते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास थीम्स उभर कर आ रही हैं। पहली तो यही थेरेप्यूटिक कल्चर वाली बात और एक्सपर्ट्स पर हमारी बढ़ती निर्भरता।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे जीवन के हर पहलू के लिए एक एक्सपर्ट मौजूद है, पेरेंटिंग एक्सपर्ट, लाइफ कोच, रिलेशनशिप गुरु।
और लैश कह रहे थे कि ये हमें मजबूत बनाने के बजाय और निर्भर बना रहे हैं। भारत में भी ये ट्रेंड दिखता है।
दिखता है। दूसरा थीम है इंटीमेसी का बदलता मतलब, रिश्ते जैसे आपसी फायदे या पर्सनल ग्रोथ का साधन बन गए हों।
हाँ, इस रिश्ते से मुझे क्या मिल रहा है, ये सवाल शायद बहुत अहम हो गया है, गहरी कमिटमेंट और अपनेपन से ज्यादा।
तीसरा, पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स का सतही हो जाना।
बिल्कुल, बहसें मुद्दों पर कम, पर्सनल अटैक्स और इमेज बनाने पर ज्यादा होती हैं। राजनीति कई बार तमाशा ज्यादा लगती है, सोशल मीडिया पर तो यही दिखता है।
चौथा, इतिहास और परंपरा से हमारा कट जाना, सिर्फ नए ट्रेंड्स पे फोकस करना, अपनी जड़ों को भूल जाना, इससे जिंदगी में खालीपन आ सकता है।
और पांचवा,
कंज्यूमर कल्चर का हमारी पहचान पर हावी होना। हम क्या हैं ये इससे तय होने लगता है कि हम खरीदते क्या हैं, कौन सा ब्रांड यूज करते हैं।
खुद को एक प्रोडक्ट की तरह बेचने का दबाव।
हाँ, एक तरह से।
लैश की किताब में बहुत सी ऐसी तीखी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं। कुछ खास विचारों को अगर हम याद करें।
एक तो ये है प्रतिस्पर्धी व्यक्तिवाद की संस्कृति स्वयं के साथ एक नार्सिसिस्टिक व्यस्तता के मृत अंत तक पहुंच गई है।
मतलब जब इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो असल में इंसान को अकेला और खोखला बना देता है।
सही। दूसरा, समकालीन माहौल चिकित्सीय है, धार्मिक नहीं। लोग व्यक्तिगत कल्याण, स्वास्थ्य और मानसिक सुरक्षा की क्षणिक अनुभूति चाहते हैं।
मतलब गहरी खोज के बजाय बस तुरंत आराम, फौरी समाधान चाहिए।
तीसरा, नार्सिसिस्ट अपने आत्मसम्मान को मान्य करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। वह एक प्रशंसक, दर्शक के बिना नहीं रह सकता।
ये दिखाता है कि जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा आजाद दिखते वो असल में दूसरों की तारीफ पर कितने टिके हो सकते।
और चौथा, अतीत को उपभोग की पुरानी शैलियों के बराबर मानकर तुच्छ बना देने के बाद नार्सिसिज्म की संस्कृति ने खुद को भविष्य से भी वंचित कर दिया है।
यानी इतिहास से कटने का नतीजा ये है कि हम भविष्य बनाने की दिशा भी खो देते हैं। ये बातें आज भी कितनी सच लगती हैं।
हाँ बिल्कुल, खासकर जब हम ऑनलाइन दुनिया देखते हैं जहाँ इमेज ही सब कुछ है, हर कोई अपनी कहानी का हीरो है और हर पल कुछ नया ट्रेंड कर रहा है।
तो सवाल ये है कि इन विचारों का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करें क्या? क्या ये सिर्फ एक निराशाजनक तस्वीर है या इससे कुछ सीखा भी जा सकता है?
मुझे लगता है इसे समझना ही पहला कदम है। जैसे अपने रिश्तों में हम शायद ज्यादा गौर कर सकते हैं कि कौन से रिश्ते सिर्फ ऊपरी हैं और कौन से गहरे, अपनी कमजोरियों को मानने और बताने में शायद कम हिचकिचाए।
और बच्चों की परवरिश में शायद हर छोटी मोटी बात के लिए फौरन किसी एक्सपर्ट के पास भागने की बजाय बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रेजिलियंस यानी मुश्किलों से जूझने की ताकत डेवलप करने पर ज्यादा ध्यान दें।
हाँ, सिर्फ तारीफ करके सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की जगह उन्हें मेहनत और काबिलियत की कदर करना सिखाएं।
काम की जगह पर
शायद हम सतही दिखावे और जो कॉर्पोरेट बातें होती हैं उनके पीछे के असली मतलब को बेहतर समझ सकते हैं, असली स्किल और ईमानदारी को ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं।
और मीडिया या राजनीति को देखते हुए
ज्यादा क्रिटिकल बन सकते हैं, सिर्फ इमोशनल अपील्स या चमकदार इमेज से इम्प्रेस होने के बजाय फैक्ट्स और तर्कों पर ध्यान दे सकते हैं।
इतिहास पढ़ना, अपनी जड़ों से जुड़ना, ये भी शायद मदद कर सकता है उस लगातार वर्तमान के दबाव से निकलने में।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो एक बात सबसे खास रही वो ये है कि लैश, जिसे नार्सिसिज्म कह रहे हैं, वो सिर्फ व्यक्तिगत घमंड या ईगो नहीं है,
बल्कि
वो एक कल्चरल रिस्पॉन्स है, अनिश्चितता से, मीनिंगलेसनेस से, अकेलेपन से डील करने का एक तरीका है, भले ही वो तरीका प्रॉब्लम को और बढ़ा दे।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जो चीजें हमें अक्सर अपनी पर्सनल कमियां या चिंताएं लगती हैं, जैसे रिश्तों में इनसिक्योरिटी या काम से असंतोष या भविष्य की चिंता, वो कई बार बड़े सोशल और कल्चरल ट्रेंड्स का हिस्सा होती हैं।
ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं थोड़ी राहत देता है।
लैश का विश्लेषण गंभीर है, कुछ हद तक निराशाजनक भी लग सकता है, लेकिन ये हमें उन अदृश्य ताकतों को पहचानने में मदद करता है जो हमारे व्यवहार और सोच को शेप देती है।
और किसी चीज को पहचानना ही उसे बदलने की तरफ पहला कदम है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल नहीं, स्ट्रक्चरल भी हैं, और शायद समाधान भी सामूहिक और स्ट्रक्चरल लेवल पर खोजने होंगे।
तो एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हम अनजाने में ही इस आत्ममुग्ध संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी रोज की आदतों से, अपनी पसंद नापसंद से, अपने रिएक्शन से?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।